आज की बात। प्रिय श्रोताओं, कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। हसन अब्बास का सलाम स्वीकार करें। आज हम चर्चा करेंगे भारत में जन्म पूर्व लिंग परीक्षण और कन्या भ्रूण हत्या की समस्या की। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के अलीगढ़ के एक अस्पताल में पुलिस ने छापा मारकर लिंग परीक्षण करने वाले एक डॉक्टर दंपति को गिरफ्तार कर लिया। बाद में भाजपा के दो विधायकों के दबाव पर पुलिस ने आरोपी दंपति को छोड़ दिया। इस घटना ने एक बार फिर ये बात उजागर कर दी कि भारत में लिंग परीक्षण पर प्रतिबंध और इसके दंडनीय अपराध होने के बावजूद ये काम जारी है। इस्लाम ने भ्रूण हत्या की कड़ी निंदा की है। सूरह अनआम की आयत नंबर 151 के एक भाग में कहा गया है, और निर्धनता के कारण अपनी संतान की हत्या न करो कि हम तुम्हें भी रोजी देते हैं और उन्हें भी। अगर यह हत्या भ्रूण के लिंग के कारण हो तो और भी निंदनीय है। इस्लाम से पहले के अरब जगत में जब किसी के घर बेटी पैदा हो जाती थी तो उसका चेहरा काला पड़ जाता था और वो अपने आप को अपमानित महसूस करता था। अंततः लड़की का बाप किसी न किसी तरह उसकी हत्या कर देता था। इस्लाम ने इसका कड़ाई से विरोध किया, बेटी को बाप के लिए ईश्वरीय दया बताया। ये तो आज से 1400 साल पहले के अरब जगत के जाहिल समाज की बात थी, लेकिन बड़े खेद की बात है कि भारत जैसे प्रजातांत्रिक और विकासशील देश में तथा कथित शिक्षित लोग भी ये अपराध कर रहे हैं। पिछले कुछ ही वर्षों में कई करोड़ लड़कियों की गर्भ में हत्या कर दी गई, और ये अपराध भारत के किसी विशेष क्षेत्र में नहीं बल्कि हर स्थान पर हो रहा है, कहीं कम तो कहीं ज़्यादा। भारत के एक प्रख्यात टीवी शो में बताया गया कि कन्या भ्रूण हत्या गांवों, ग्रामीण क्षेत्रों और शहरों से ज़्यादा बड़े शहरों में होती है, और इसी तरह गरीब और अशिक्षित लोगों से अधिक पढ़े लिखे लोग ये अपराध करते हैं। नई दिल्ली में प्रसूति विशेषज्ञ डॉक्टर पुनीत बेदी एक टीवी कार्यक्रम में कन्या भ्रूण हत्या के बारे में अपने विचार प्रकट करते हुए कहते हैं,
ये 70s का ज़माना था जब ये माना जाता था कि हमारे देश में जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जो गरीबी है, जो कमियां हैं, वो इसलिए हैं कि हमारी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। अब ये सारी प्रॉब्लम गवर्नमेंट हॉस्पिटल से शुरू हुई। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ने एक पेपर छपा था, उन्होंने कहा कि ये तो लोग तो सिर्फ लड़का चाहते हैं, और लड़कियाँ तो ऐसी बिना बात पर पैदा हो रही हैं जैसे हम गन्ने में से चीनी निकालते हैं, मोलासेस, कोई साइड जैसे बाई प्रोडक्ट निकलता है। तो अगर हम लड़कियों को निकाल दें और जिसको लड़के चाहिए सिर्फ लड़के पैदा करें तो इस देश की समस्या जो है, जो आबादी है, वो हल हो जाएगी। अब इसके तहत एक बहुत एक्सटेंसिव प्रोग्राम बना और ये देश भर के बड़े अस्पतालों में फ्री ना सिर्फ ये सर्विस उपलब्ध कराई गई, बल्कि जो भी माँ आती थी उसको, इनफैक्ट जैसे सेल्समैन बात करते हैं वैसे, उनको समझाया जाता था फैमिली प्लानिंग वर्कर्स के द्वारा, नर्सिस के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा कि क्यों बार बार बच्चे पैदा कर रही हो, तुमको एक या दो लड़के चाहिए ना। तो कुछ एक्टिविस्ट ने उसके ऊपर एतराज़ जताया तो सरकार ने ऑफिशियली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बंद कर दिया, लेकिन तब तक तीर कमान में से निकल चुका था। लोगों को मालूम चल गया था कि ऐसी जाँच हो सकती है और एक मार्केट में डिमांड आ गई थी, और वही डॉक्टर टेक्नीशियन उन्होंने सब ने अपने अपने प्राइवेट क्लिनिक्स खोल लिए। पहले एक एमनियोसेंटिसिस करते थे, मतलब वो कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक थी, उसमें बच्चा गिरने का चांस रहता था, काफ़ी महंगा था तो कम लोग कराते थे। लेकिन जैसे ही अल्ट्रासाउंड आया 1990 के आसपास, तो ये बिल्कुल 2 मिनट में अवेलेबल हो गया। इसमें डॉक्टर्स को एक गोल्ड माइन मिल गई, कितने ज़्यादा वो केस करने, एक एक दिन में कितने 10-10, 20-20, 30-30 केस कर सकते थे, और जो मशीन बनाते और बेचते हैं उनको एक रेडी मार्केट मिल गई। उनके जो सेल्समैन डॉक्टरों के पास जाते थे उनको ये समझाते थे कि देखो ये इतनी मशीन 1-2 लाख, 3 लाख की है, लेकिन इतने पैसे आप कमा सकते हो कि 1-2 महीने में ही इसकी आप सारी किस्तें चुका सकते हो और आपका सारा बहुत प्रॉफिट होगा। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। अल्ट्रासाउंड बेचने वालों के लिए बहुत प्रॉफिटेबल है, डॉक्टर्स के लिए, नर्सिंग होम्स के लिए, छोटे अस्पताल, बड़े अस्पताल। तो इन द एंड ये 2-3 हज़ार करोड़ की इंडस्ट्री कम से कम है।
भारत सरकार ने देर ही से सही लेकिन भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सन 1994 में एक कानून पारित किया जो सन 1996 में लागू हुआ। इस कानून के अंतर्गत गर्भधारण के पहले या बाद में लिंग चयन और जन्म से पहले कन्या भ्रूण हत्या के लिए लिंग परीक्षण करना अपराध है। PNDT अधिनियम भारत में कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित एक संघीय कानून है। इस अधिनियम से प्रसव से पहले लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी तरह भ्रूण परीक्षण के लिए सहयोग देना व विज्ञापन करना भी कानूनी अपराध घोषित किया गया है, जिसके लिए 3 से 5 साल तक की जेल व 10,000 से 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय की उपायुक्त सुषमा दुरेजा एक टीवी कार्यक्रम में इस कानून के बारे में बताते हुए कहती हैं,
देखिए इसमें ये कहा गया है कि जो भी व्यक्ति, जो भी डॉक्टर्स हों या ऐसी जगह हैं जहां पर इन चीज लिंग जांच हो रही है, उनके खिलाफ प्रावधान है सजा का, जो कैद भी हो सकती है और पेनल्टी भी हो सकती है। इसके अलावा महिला के परिवार के लोग, चाहे वो पति हों उसके या उसके और ससुराल के लोग हों, जो उसको इस बात के लिए मजबूर करते हैं कि आप लिंग जांच कराइए, उनके लिए भी आर्थिक जुर्माने का भी और सजा का भी प्रावधान है। डॉक्टर और जो जहां पर ये अल्ट्रासाउंड या इस तरह की जांच, कोई भी और जांच की जा रही है, उस जगह का जो मालिक है के प्रेमिसेस में ये सब हो रहा है, उनके लिए भी है सजा का प्रावधान। पहली बार करने पे जैसे 3 साल की सजा और 10,000 रुपये के जुर्माना हो सकता है। 12 अगर ऐसी समस्या सामने आती है तो 5 साल की कैद और 50,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के निदेशक बिंदु शर्मा कहती हैं कि सरकार ने कानून तो बना दिया है और कानून किसी भी अपराध को रोकने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है, लेकिन इसे सही ढंग से लागू करने के लिए और अधिक प्रयासों और उपायों की जरूरत है।
देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि कानून है और हमारे लिए बहुत ही एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट देता है, क्योंकि भारत देश एक ऐसा अनोखा देश है जहाँ पर अभी भी मानसिकता ये है कि कम से कम एक बच्चा जो है वो परिवार, अधिकतर परिवार मेल चाहते हैं, और लड़की को जो बहुत ही अगर कंजर्वेटिव नहीं है, लिबरल है, वो भी कहते हैं अधिकतम एक लड़की। तो ऐसी परिस्थिति में इस कानून की प्रासंगिकता बहुत बढ़ जाती है। हमें जो फीडबैक मिलता है वो ये है कि अमूमन ये कहा जाता है कि कानून जो है सक्षम नहीं है। कानून तो एक फ्रेमवर्क तय कर रहा है हमारे लिए कि क्या अपराध है और क्या नहीं है, और फिर अपराध जो है तो फिर उसमें कितने तरह के अपराध हैं और उनकी क्या सजाएं हैं, रिकॉर्ड्स रखा जाना है और किस तरह रखा जाना है, किस तरह जांच की जा सकती है फैसिलिटीज़ की, ये सब उसमें विश्लेषण किया गया है। हमें इसके लिए और सपोर्टिव कुछ करने की ज़रूरत है। एक्ट एक अकेला आगे नहीं बढ़ पाएगा। मुख्यतः जो इसमें मुश्किलें आती हैं इसको इम्प्लीमेंट करने में, वो ये कारण ये है कि दो पार्टीज़, डॉक्टर और जो प्रेग्नेंट महिला है, के रिलेटिव्स हैं, दे आर इन क्लोज कनाइवेंस। तो अनलेस एक उनमें से अप्रूवर हो जाए, एक हमें बता दे, भेद खोले, उसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है।
सुषमा दुरेजा कहती हैं कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सिर्फ कानून काफी नहीं है, बल्कि इसके लिए सामाजिक स्तर पर जागरूकता लाना बहुत जरूरी है। जब कोई गर्भवती महिला अल्ट्रासाउंड के लिए जाएगी ही नहीं तो धीरे धीरे ये अपराध भी समाप्त हो जाएगा।
मैं इस समस्या को दूसरे दृष्टिकोण से भी कहना चाहूंगी। एक्ट पकड़ करना कि कौन इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, कहाँ कमी है, कौन लोग सेक्स डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, वो तो समस्या का एक पहलू है। उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है, इसकी क्या सामाजिक कारण है। जब तक डिमांड रहेगी सप्लाई साइड भी रहेगी। अगर एक महिला या उसका परिवार आज इस चीज़ की इच्छा रखते हैं कि ये पता चले कि लड़का है या लड़की, तो अल्ट्रासाउंड मशीन भी है, करने वाले क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी हैं, और कोई महिला पहुंचेगी इस जांच के लिए तो शायद एक नहीं तो दूसरा डॉक्टर तैयार हो जाएगा। तो हमें इसके जो सामाजिक कारण हैं, जो लड़कियों से जुड़ी हुई समस्या हैं या लोगों की जो विचारधारा है, उसके बारे में सोचना भी बहुत ज़रूरी है। सब इसी बातों पर हम जोर दे रहे हैं कि उन लड़कियों को किस तरह से, पहले बात तो ये कि उनका भ्रूण हत्या ना हो, स्वस्थ रूप में पैदा हों, उनके अच्छी से देखभाल की जाए, उनको पढ़ाई मिले अच्छे से, और इस तरह से सक्षम बनाया जाए कि वो अपना ही नहीं, अपने पूरे परिवार का, अपने पूरे समाज का भला कर सकें।
हर कानून को तोड़ने वाले कुछ लोग जरूर होते हैं और कन्या भ्रूण हत्या कानून भी इससे अपवाद नहीं है। विशेषकर धनवान लोग इस कानून से बचने के लिए विभिन्न हथकंडे अपनाते हैं, जिनमें से एक विदेश जाकर लिंग निर्धारण या गर्भपात कराना है, क्योंकि कई देशों में ये वर्जित नहीं है। इसलिए जरूरी है कि इस संबंध में सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के साथ ही साथ इस कानून को कड़ाई से लागू भी किया जाए। भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना शुरू करके इस संबंध में एक पहल की है। बिंदु शर्मा इस परियोजना के बारे में बताते हुए कहती हैं,
इसके बारे में बताना चाहूंगी। स्कीम को 3 मंत्रालय संयुक्त रूप से लागू कर महत्वपूर्ण भूमिका है। एक तो अपना भारत सरकार का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, और आपका मानव संसाधन विकास, और महिला एवं बाल विकास। और उसमें बहुत सारे एक ऐसे कोशिश हुई है, आईसी पे बहुत जोर है। आईसी में जो हम कहते हैं कि मनस्थिति या जो उसका परिवेश बदलने की बात हो रही है, कि जो सोच है उस पे हम जोर दे रहे हैं कि सोच कैसे बदले, तो आईसी के लिए और बच्चे को पढ़ाने के लिए महिला पे फोकस करने के लिए बहुत जोर है। 65 लाख रुपये लगभग ये दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ वेमेन चाइल्ड डेवलपमेंट।
कन्या भ्रूण हत्या एक सामाजिक व धार्मिक अपराध तो है ही, साथ ही ये भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है, क्योंकि अगर भविष्य में समाज का लिंगानुपात उचित न हुआ तो हमारे अपने लड़कों को शादी के लिए लड़कियां नहीं मिलेंगी और वे विभिन्न प्रकार के सामाजिक विकारों में ग्रस्त हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि जो लोग गर्भधारण के आरंभ में लिंग निर्धारण के लिए क्लिनिकों में जाते हैं, वे स्वयं को धोखा देते हैं, क्योंकि विकसित से विकसित मशीनें भी गर्भ के आरंभिक सप्ताहों में ये बताने में सक्षम नहीं है कि भ्रूण बालक है या कन्या। क्लिनिक वाले लड़की बताकर बालक को भी गिरा देते हैं और लोग बेटे की चाह में पैसे देकर खुद अपने बेटे का ही खून बहा देते हैं।